بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. مٹی میں مل گئے ہیں مگر پھر بھی مہک ہے, مٹی میں مل گئے ہیں مگر پھر بھی مہک ہے, باد صبا یہ مشک ہے کس کی مزار کی. بزرگوں دوستو, ہم سب لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں, جمع کیے گئے ہیں, اس کی کوئی وجوہات ہے, اس کی کوئی روحانی معاملات ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے زندگی میں دیکھا, بہت کچھ دیکھا سمجھا, اور اب بھی ان کی حیثیت کو اور ان کی ہستی کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. قصص الاکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے جس طرح سے بھی, تو ندا کرتا ہے جبرائیل, میں فلاں بندے پر راضی ہوں, تو بھی راضی ہوں. جبرائیل السلام حاضر ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ آپ راضی ہیں, میں بھی اس پر راضی ہوں. پھر جبرائیل السلام ملاء العلا میں آتے ہیں اور وہاں اعلان کرتے ہیں کہ تمام فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہے, جبرائیل بھی راضی ہے, فرشتوں تم بھی راضی ہو. سب فرشتے پھر جبرائیل السلام آسمان زمین پر آتے ہیں اور آ کر کے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے پر راضی ہے, جبرائیل بھی راضی, اس کے فرشتے بھی اس بندے پہ راضی ہیں, لہذا وہ بندہ قابل احترام ہے. یہ آواز تمام زندہ قلوب پر پڑتی ہے دنیا کے اندر. جتنی کائنات میں انسان ہیں اور جن کے دل زندہ ہیں, ان کے دل پر یہ آواز ندا کرتی ہے, ہٹکتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں آج کل موبائل میں آواز آتی ہے, ایسے دلوں پہ آواز آتی ہے, اور وہ دل پھر ایک دم اس شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس وقت اللہ راضی, فرشتے راضی, بڑے راضی ہیں. وہ دل اس کی تلاش میں پھر ہو جاتے ہیں, اور اس کی تلاش میں وہ منتظر گفتگو میں لگ جاتے ہیں کہ بندہ کہاں ہے, یہ بندہ کہاں ہے, اس بندے کی کیا عبادت ہوگی, ہمارے حضرت جی کی کیا عبادت ہوگی, کیسے کیسی عبادت انہوں نے کی کہ اللہ راضی ہو گیا, فرشتے راضی ہو گئی, اور رضا کے بعد وہ جو آواز ندا قلوب پر گئی ہے, انڈونیشیا, ملائیشیا, سری لنکا, آسٹریلیا, امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, ساری دنیا کے اندر, بھارت, بنگلہ دیش, وہ آواز یہاں مرشد آباد میں نہیں, ساری دنیا میں پھیل گئی ہے, اور اس شخص کی, اس ہستی کی تلاش میں پر وہ لوگ چل پڑے. دھیرے 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 ان تک وہ پار, وہ نشان دہی ہوتی گئی ہے کہ وہ شخص وہاں ہے, وہ شخص وہاں ہے, یہ ہستی یہاں ہے جس پہ اللہ راضی ہوا. سو فرشتے راضی ہوئے, جبرائیل راضی ہوئے, اور وہ ندا وہ آتے آتے دیکھ لیں, اب اپنے گرد و نواح میں نظر ڈال مار کے دیکھ لیں کہ یہ بندے کہاں کہاں گئے. عقل گوارا نہیں کرتی کہ انڈونیشیا سے آدمی یہاں آئے, کوئی نانا نانی یہاں نہیں, اس کا کوئی یہاں رشتے دار نہیں ہے, زبان بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں, بات بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں, وہ بےچارے پتہ نہیں ان کے دلوں کی کشش کیسے کیسے انہیں کھینچ کے لائے, کن کن مراحل سے گزر کے وہ آئے ہیں, پرواہ نہیں ان کے پیسے کی بھی, ان کو بدل کی کچھ لالچ کسی قسم کی نہیں, اس نے ان ہستی کو حاضری دینے کی, یہ ہستی ہے وہ جس پہ اللہ راضی ہوا ہے. اور آپ غور کریں کہ اس میں کیا, کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی اخبار نہیں ہے, کوئی کسی قسم نشریات نہیں ہے کہ یہ بندہ یہاں, और वो कुलूब की जो इसलाह है वो ले लेकर सिमट करके यहाँ आती है। इसमें हमें अल्लाह ताला के कुदरत के पहचानने के बड़े राज मिलते हैं, इसमें इस्लाम की बड़ी खुशबू मिलती है कि इतने हमारा दीन, हमारा मज़हब और हमारी हस्तियाँ जो हमारे अजी ने इबादत की हैं वो कैसे कबूल हुई हैं, किस तरह कबूल हुई हैं और उनकी कबूली की क्या हैसियत है, कितना बड़ा मकाम है उनका कबूल का, उनके मकाम का। और वो जो उन्होंने कबूल इबादत की है ना, वो सारी की सारी समेट कर वो हमें अता फरमा गए हैं, किताबों के जरिए भी और अपने मशाइख के जरिए भी। हज़रत बेग साहब मंजिल आली, शाह साहब मंजिल आली जैसी हस्तियाँ वो तैयार करके हमें अता फरमा गए ना ये। और अब किताबें गलैली सूख जैसी किताबें और दीगर किताबें हमारे हिस्से की, वो हस्ती खुद अमल करके और हमें सबूत दे के चली गई हैं। तो इससे हमें ये साबित करना, हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि हमने वहाँ उस शख्स की मिजार तक पहुँच गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं मगर फिर भी महक है, बाद सवा ये मुश्क है किसके मिजार की, इस मिजार की वो मुश्क हमें समेट के कैसे ले आई है, कैसे कैसे ले, हमें तो हम तो खुशकिस्मत है हम इस इलाके के हैं, हमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब जायजा लें उन लोगों का कैसे लाए गए हैं, कैसे समेटे गए हैं, करूँ अल्लाह 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 ने उनको कैसे कबूल किया है और किस तरह से वो आकर के यहाँ मुस्तफ़िद हो रहे हैं, वो खुशबू सूख रही है। इससे थोड़ा सा ध्यान करें इस जो तालीम है इनके हमारे शेख की, वो क्या कमाल की तालीम है, उसमें अल्लाह भी राजी, फरिश्ते भी राजी, सारी कायनात राजी उस पर, और उसने हमें इनके हर अमल को, हर इनके तरीके को जो हमारी हमारे पास किताबें हैं, किताबें बांट रहे हैं करण जावेद साहब की, सारी किताबें उनका माखज़ हैं। उसके अलावा हजरत की इतनी किताबें हैं, पढ़ के देखें तो हैरान हो जाएंगे क्या क्या कमालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं इस आखिरी हस्ती दौर में, गुनाहों के दौर में। और ऐसा कमाल हीरा और मोती हमें अता किया है कि हम उनके पैर धो दो पीए कभी कम है उनके, उनके मशाई के, उनके खानदान के। मगर ये है कि बात यह है सिर्फ यहाँ आना नहीं है, असल में इसको फैलाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुलमत कदे में नूर फैलाना भी है। ये किताबें हमें या बुजुर्ग या काबिर या मशाइख हमें मिल गई हैं, इनके फरमुदात को हमने आगे फैलाना है। हम तो नूर बन गए हैं लेकिन नूर बनने से काम नहीं बनता, उस नूर को फैलाए बगैर बात नहीं बनती। इस किताबों को, इनके उलूम को, इनके हिदायत को, इनके नसीहात को फैलाएंगे तो बात बनेगी। अब हम यहाँ आए हैं, चार दस दिन रहेंगे, दो दिन चार दिन आठ दिन दस दिन, ये जो हम मोती ले रहे हैं तलाश कर रहे हैं, इनको बराए मेहरबानी समेटें और आगे फैलाएं, फिर देखिए अल्लाह राजी कैसे होता है। अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, वो तो राजी होने में तैयार है, रहमत है बहाना मी शोएब, अल्लाह ताला के साथ तो बहाने ढूंढती कि मेरे किसी नेक बंदे के नजदीक तो लगो, मैं तुम्हें भी नेक बना दूंगा, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारी कबूर में भी मैं मुश्क फैला दूंगा। इसलिए मेहरबानी से यहाँ आने को गनीमत जाने और यहाँ की एक एक बात को अपने अंदर समो के आगे फैलाने की बात करें। हम देख रहे हैं यहाँ बहुत से साथी आते हैं मेला देखने के लिए आते हैं, अब यहाँ बयान हो रहा है जाकर देख रहे कितने आदमी सोए हुए हैं, उस आने का क्या फायदा, कितने आदमी अपने दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए हैं, कितने लेन देन के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ जिसे आना नसीब हो गया तो वो इस खुशबू से फायदा उठाए, खुशबू जाहिरन भी खुशबू देख समझ रहा है, हमारे पास बैठे हैं बात बता रहे हैं, ये जाहिरन भी हैं और बातन भी हैं, इस खुशबू से फायदा उठाएं। यहाँ आकर के अगर अपनी दुनियादारी के धंधे करके चला गया तो क्या फायदा, यहाँ इनसे फायदा उठा लें, बार बार दुनिया में नहीं आना है, इंसान एक ही तरफ आना है। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में यहाँ आना नसीब कर लिया तो इस आने को गनीमत जान ले, गनीमत जान ले इस मिल बैठने को, गनीमत जान ले इस मिल बैठने को, क्योंकि जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, फिर ना कहना ऐसी हस्ती के दौर में, ऐसी हस्ती के मदफन के पास गए भी हम प्यासे आ गए हैं, हम प्यासे रह गए हैं, फिर पछतावा होगा, हाथों को काट कर खाएंगे कि आओ हो उस दौर में उस शख्स की हस्ती से और ऐसी जिंदा हस्तियों को भी देख लिया आपने, फिर भी उनका कहना नहीं माना, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। बड़ा मेहरबानी, अपने आप के कानों को खोल के, दिल को खोल के, आंखों को खोल के रखें और यहाँ के एक एक लम्हात को अपने अंदर पिरो लें। बस यही जन्नत है, याद रखना, खुली जन्नत है, कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की जात तो बहाना ढूंढती है। यहाँ आकर भी अगर आप मकर कर रहे हैं और अपने दुनियावी मामला में फंसे हुए हैं और अपने नजरियात को बहुत तरफ लगाए हो, तो फिर बहुत बड़ी बदबख्ती होगी। तो अर्ज यही है आप लोगों से, मैं तो खुद इतना आलिम फाजिल या कोई दूसरा नहीं हूँ और ना कोई शोला बयान हूँ, मुझे तो अजर आर्डर देते हैं, मैं बैठ जाता हूँ और कुछ दो चार अपने दिल के दर्द पेश कर लेता हूँ। इसलिए आप मेहरबानी फरमा के अपने हाल पर मेरे फरमाए, मेरे हाल पर मेरे फरमाए और अकाबरी के कहने को मानना, बस जितना जो अजर मशाई फरमाते हैं ना उसको दिल पर रख लें, समेट लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा इसमें बहुत बड़ा बेड़ा पार कर देगा और हजरत के बदन पर जाकर मुराकब हो जाया करें। कभी कोई खास जरूर हाजत हो, खास मामला हों, लोगों पर कोई मजबूरियाँ हों, तो यहाँ कभी कभी रात को दिन को दहत को बैठ के अपने मसाइल अर्ज कर दिया करें। अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को कबूल किया है। बड़े बड़े राज हैं, वो बताए नहीं जाएंगे, लेकिन तुम अपने दुख रहोगे तो पूरे हो जाएंगे। हजरत फरमाते थे कि मैं अल्लाह ताला ने मैं जिंदगी में जो चीज़ आपको दे रहा हूँ, अगर ये खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला की दात बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह ताला की दात बहुत बड़ी हस्ती है, अगर ये चीज मुझे खतरा है, मरते दम तक शैतान बड़े वारदात करता है, कई बुजुर्गों की बुजुर्गियां छीनी है उसने, तो मैं खौफ, खुदा के खौफ से कहता हूँ कि अगर मैं बा ईमान के हालत में ये दौलत ले गया और ईमान के हालत में फौत हो गया, तो फिर मेरी कब्र पे आना, मेरी जिंदा हैसियत से भी ज्यादा आपको अल्लाह ताला से मिल पाऊंगा। तो आप यहाँ आए हैं, अपनी मुराकिब हो जाया करें, मुराकिब हो जाया करें और अपना हाल अहवाल बैठ जाया करें। खासकर ये थोड़ी सी अर्ज है, साथी बुरा मान जाते हैं, नहीं मानना चाहिए। हमें भी अपनी तालीम में अकाबर ने ये सिखाया है, कब्र शरीफ के पास बैठना मुराकिब की जगह है, मुराकबे की जगह है। वहाँ साथी मुराकबा कर रहे होते हैं और वहीं साथी जोर जोर से जिक्र में हो, चले तीसरा लतीफा, चले चौथा लतीफा, चले पांचवा लतीफा, मुराकबा कैसे होगा? वो तो मुराकबे की जगह है। तो खुदा के लिए खुद भी मुराकब होना सीखें और जो कर रहे हैं उनको भी मुराकबा करने दें। जिक्र के सारा जहां है, सारे कमरे, सारा हाल, सारी जगह पड़ी है, वहां मुराकबे में एक सुई और रबत में शेख, हमारे सबसे बड़े शेख हजरत जी रमजल्ले हैं, बाकी ये जिंदा आपको बताने के लिए बैठे हुए, तो उनसे वहां मुराकिब होने में फजीलत है। वहां अर्ज अहवाल अपने बाप से, रूहानी वालिद से करने कराने का वक्त है, जगह है। आप अपने दुखों में भरे हुए हैं, उनको दुख सुनाए अपने बाप को, जिन्होंने हमें तालीम दी है, जिन्होंने हमें अल्लाह के प्यारे हुए हैं, जिन्होंने अल्लाह के दर्शन उनकी कबूलियत हुई है, और कितना खलक को ये आई है, ये उसके कमालात देखे कि अल्लाह ने क्या कमालात आ दिए। वहां बैठ के और अकरबियत कैदियत अकरबियत जा करके, जो छोटे हैं जिस वजह ऊपर वाले अकरबियत जा करके खारी तौर पर ध्यान में आए और बैठ के और ऐसा समझे कि कब्र वर में जाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कब्र में फौर दाखिल होना जैसे आप घरों में दाखिल हो गए, ऐसे समझे मैं अपने बाप के पास आया हूँ। अदब से बैठ जाए और कोई तोहफा हदिया पेश कर दें, अलम शरीफ, कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, जो आती है आपको कलाम इलाही में से, ये कलाम इलाही का पढ़ के किसी रूह के साथ मरहूम के पास, ऐसा है जैसे कि बेटा इंग्लैंड से आया है और बहुत बड़े बंडल लेके आया है, तो तोहफे लेके आया है, पिंडी से आया है अपने घर में और तोहफे लेके आया है। तो हम जब अपने बाप के घर मुराकी बोलते हैं ना कबर के पास, तो वहाँ आलम शरीफ, कुलवल्ला शरीफ, हजूर शरीफ और पढ़ के ऐसे उनके एहसाल करें बैठते। तो ये उनके लिए ऐसे तोहफे जैसे फल फ्रूट मेवा मिठाई ऐसे हैं मरहूम के लिए, क्योंकि पहले भी वो अल्लाह के फल से निजात याफ्ता हैं और इनाम याफ्ता हैं। मगर ये आपका एक तोहफा बेटे का उनके लिए भाई से तस्कीन होगा। अब आप अदब से बैठ जाए और अपने दिल पर अपना ख्याल करें कि मेरी क्या हाजात है किसी अदब के साथ। अल्लाह ताला उन मरहूम को ये सलाहियत अता फरमाई है उनकी उनके इनाम में कि वो आपके दिल पर उठने वाले ख्याल को जान लेते हैं रूहानी तौर पर। अब आप अर्ज़ो मारूज करें और अदब से बैठे रहें, वो आपकी अर्ज़ो मारूज को अल्लाह के यहाँ पेश कर देंगे जिससे कबूलियत का बायस बन जाएगी। ये है अदब का तरीका, अदब का सलीका। तो आप खुदा के लिए अपने हम दुनिया के जंजाल खाने में आए हुए हैं, हमारे घरों में हजारों परेशानियां, मोहल्ले में, गली में, कूचों में, औलाद में परेशानियों का अंबार लेके हैं। उन परेशानियों को यहाँ इन बुजुर्गों के जरिए से दुआ अल्लाह के यहाँ खुशियों में तब्दील करवाई। न जाएगा कि यहाँ इतना शोर मचा दें कि वहाँ मुराकबे की जगह है उसको आपने दूसरा बना दिया। इबादत लेकर लाई तो हर जगह कर सकते हैं। तो वहाँ खुदा के लिए वहाँ भी अगर कोई भी ना हो जाए तो जिक्र भी कर दें, मना नहीं कर रहा मैं, ना हमारे काबिल ने मना किया। लेकिन ये कि वो जब मुराकब जो लोग हो रहे हैं उनका क्या हाल होगा, मुराकबे की जगह वो मुराकबा करने के लिए वो अपने वालिद से बातचीत कर रहे हैं, आपके वालिद भी आप भी बातचीत करें। तो ये जो जिक्र का वहाँ वबेरा मचाना ठीक नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ की पीली तेकी लेकर के यहाँ आकर बैठ जाते हैं और अपने मुरीद चार पाँच बैठाए होते हैं और यहाँ आकर वो जो फनकारियाँ दिखाते हैं ना अपना नशूद व नमा करते हैं, सुन के हैरान हो जाता है इंसान। ये तो नहीं सिखाया पूरे तीर चमका कर देखा, फिर अपने गांव में जाकर देखा मैं हजरत गुजार करना चाहता जी, मैं उनको रोकने वाला कोई नहीं, मैं ही हूँ वहाँ पर सबसे बड़ा पीर। भराई मेहरबानी यहाँ अदब का तकाजा है, अदब से जाकर के अपने मुराकब होना चाहिए। मुराकबा गौर व फिक्र को कहते हैं, मुराकबा गौर व फिक्र करें और अपनी परेशानियों का अजारा चाहें अर्ज करके अपने वालिद से, अपने रूहानी बाप से जिनसे अल्लाह राजी है, जिससे अल्लाह राजी हो उसके पीछे रह दो, अल्लाह तुमसे भी राजी हो जाएगा। अतात तो करो, उसकी दबेदारी भी करो। ये तो नहीं कि हम सब अल्लाह को ढूंढने निकले, नहीं, अल्लाह वालों को पकड़ लो। ये अल्लाह वाले में कोई शक नहीं है, देख लें अब कहाँ कहाँ से हम कौन कौन कहाँ से आए हैं, तो कोई शक है कि अल्लाह ही लेके आया है अपने बंदे की तारीम के लिए। वो उससे राजी हुआ अल्लाह और उसको कहाँ कहाँ से लेके आया। हम तो ये कह देंगे मैं बावल नगर से आया हूँ, मैं यहाँ पिंडी से आया हूँ, मैं यहाँ से, हम तो खैर हमारा मुल्क है इन बुजुर्गों से। अब उन पर हैरान हो जाए, गौर तो करें तभी आँख बंद करके कि इंडोनेशिया वालों को क्या सूची यहाँ आने की, क्या और कोई चीज़ इबादत उसने थी और नहीं, क्यों वो ये खुशबू से लेके आई है जो अल्लाह ने इस हस्ती को अता फरमाई है। वो मुश्क उसे इंडोनेशिया से पानी और समंदरों से गुजारती हुई लेके आई, कितने बलाओं से, परेशानियों से, माली जानी हर तरह से मुसीबत और यहाँ लेके आई है। ये उसको कमाल में कोई शक है कि मैं पढ़ने की जरूरत है, कोई बताने की जरूरत है कि हमारे हजरत कितने कमाल याफ्ता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। कितना बड़ा कमाल है कि लोग इतने आगे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे अर्ज है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है। न चीख है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, न चीख है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब करके अदब से झुकिया। तो भाई अदब हमें हमारे उस्तादों ने, बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख जो बयान दे रहे हैं और अकाबरीन हैं, रात भी बात की थी मशाइख ने, बड़े उस्तादों अकाबरीन ने, मियां साहब ने, इलियास साहब ने, जो अदब सीखे, करण साहब ने बड़ी पते की बात की है। इज्तिमा पे जाना है जी, छुट्टी नहीं मिली, वाह कैसे गिले रकीब के क्या ताने अकरबा, तेरा ही दिल न चाहे तो बात यहां जा, तेरा दिल नहीं चाह रहा है वहां जाने को, बातें बना ले, छुट्टी नहीं मिलेगी, फना हो गया था जी, मेरे सर में दर्द हो गया था जी, वो अल्लाह के बंदे जन्नत मिल रही है, तुम तमाम में जाकर तो देख जन्नत बढ़ रही है, तकसीम हो रही है, और तू बहाने बनाकर अपने आप पर तबाही की तरफ ले जा रहा अपने आप को, छुट्टी नहीं मिली, आज तेरे फला काम हो जाए, तेरे बेटे की शादी है, तेरे खाद भाई की शादी है, तेरे फला मामला है, फौत किया है, और तो और ये मंगनी करनी है, ये भी कोई बात है, ये मेहंदी निकालनी है जी, ये हमारे घर में आज जो चढ़ावा चढ़ाना है जी, उस पर तो तुझे छुट्टी मिल जाती है, और तुझे एक जन्नत के जहां मिल रही है, जहां अल्लाह की ज़ियारत में क्या अल्लाह ने खूबियां रखी हैं, वहां तुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए बराए मेहरबानी अपने हाथ पर रहम फरमाए, ऐसी हस्ती दुनिया में कहीं नहीं है, अगर हमें आज इंडोनेशिया जाना पड़ता ऐसी हस्ती वहां होती तो आप हिसाब लगाइए क्या हाल होता हमारा, हम तो यहीं से चल के आए हैं, कुछ क्या पासपोर्ट बनाने दूर ना हवाई में टिकट देने की जरूरत, यहां से अपनी कार में आके बैठे फिर भी आना मंजूर नहीं है, फिर भी जान छुड़ाता है कि यार बस ठीक है, मैंने हाजिर दे दी, हाजिर से बात नहीं है, दिल को दिल से राहत होती है, दिल जोड़ना पड़ता है, और यहां पूरी कुर्बानी देनी पड़ती है, अब 10 दिन में यहाँ कितना बड़ा इत्माम है, अगर आप अब उसको सोचे ना कि कितना बड़े अखराजात हैं, कितने इत्माम हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, आगे आपके आने से 3 दिन पहले लोग आकर के यहाँ आपके लिए सफाई करते हैं, आपकी चटाई फर्शी बिछाते हैं, फर्श वो लोग भी हैं जिनको, और हम 3 दिन के दे करके यहाँ भाग रहे हैं, इससे बड़ी और क्या जरूरत है कि तुझे अल्लाह की तरफ से निजात मिल जाएगी, 10 दिन अगर पूरे लगा ले तो क्या फर्क पड़ता है, मेहरबानी फर क्या फरमा के सब जगह मेरे इलाके में भी सब इलाकों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मकरो फरेब से भरे हुए आते हैं यहाँ, और अपने मकरो फरेब से खेल के चले जाए लोगों को ठग ठगा के, ऐसे नहीं करना है, दुकानें खोलनी है ये चीज ले लिया जी, अपने कारोबार के लिए आ रहे हैं जी, ये मिशन ये होना चाहिए कि मैं मेरे हजरत की ज्यारत के लिए जा रहा हूँ, बस मैं उनकी कब्र पर मुराकिब होने के लिए जा रहा हूँ, मजार शरीफ के ऊपर जो खुशबू फैल गई है पूरी दुनिया में, काश घर तक फैल गई है, चीन और इंडोनेशिया तक तमाम दुनिया में फैल गई है खुशबू, वो मेरे मुझे तो आसानी से मिल रही है, उस खुशबू के लिए आए बराए मेहरबानी, इससे बढ़कर फिर कोई नुकसान की बात नहीं होगी, मरने के बाद ही आगे पूरी रह जाएंगी आपकी, हमारी जब आँख खुलेगी ना कब्र शरीफ में जिंदा होंगे, हमें ये पता नहीं मरने का कि कब्र में क्या हो रहा है, मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिया होगा, पुलाव खाएंगे जी, फला मर गया पुलाव खाएंगे फातिया हो गया, क्या होगा, ये सारी बिरादरी तुझे उतार करके और पीछे बार खड़ी होगी कब्र के ऊपर, जो ही वो हाथ उठाएंगे तू जिंदा हो, मुनकर नकीर तू जिंदा कर चुके होंगे, ऐसे जिंदा हो जाएगा, सिर्फ ये 2.5-3 घंटे की मौत है, लहलाना कफनाना और दफनाना, 3 घंटे के लिए रूह निकलती है जान निकलती है दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने के लिए, तो वो दफना दिया 3 घंटे लगाओ या 4 घंटे लगा लो, या कुछ कह रहा कराची से मेरा फलाना मामूजात भाई आ रहा है तो उसके लिए रोक लो जनाजे को, बहुत बड़ी खतरनाक गलती है, फौरन दफनाने को जाना, जनाजे को दफनाना चाहिए, और दफनाने के बाद जो ही हम बाहर खड़े हैं फौरन मुनकर नकीर ने जिंदा कर दिया, कुंभ निकला फौरन तो खड़ा बैठ गए ऐसे लंबी पाँव, और ये इतनी ऊंची ओर लगती है सर की कब्र की फड़ी, नाप के बनाता है कब्र वाला बैठ के कितनी ऊंचाई में मैं रखूँ इसकी ऊपर की छत, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में बैठ जाएगा, और फिर से कहेगा वो हैरान हो गया क्या होगा, क्या हो गया दुनिया कहाँ गई, मेरे भी बच्चे कहाँ गए, मेरा माल मेरा कारोबार मेरे ACDC वाले कमरे कहाँ गए, जा क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी वहाँ तो कब्र ऐसी थी, फौरन कहेगा मन रब्बुक, ये 3 सवाल आज गिफ्ट ले ही ले। आलिम बैठे, मैं उनसे शर्मिंदा हूं, मैं उन्हें कह नहीं चाहता, वो तो बड़े इल्म रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही बैठे जो पता ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है। नए साथियों जो अर्ज मारूज है या जो बेध्यान साथी, उनसे तो तेरी कबर भी तूने भी उतरना है कबर में, और उतर के तूने ये जवाब देना है फरिश्ते का। वो कहेगा मन रबों का, तू समझेगा उस वक्त अरबी जुबान को भी, क्योंकि तेरा रब कौन है, तो तूने उसका जवाब देना है। दूसरा सवाल कहेगा मादीनों का, तूने उसका जवाब देना है। तीसरा सवाल कहेगा मन नबियों का, तूने उसका जवाब देना है। ये तीन सवाल तूने जवाब दे दिए तो सीधी सी बात है, तू जन्नत ही है, और वो कबर ही तेरी जन्नत उसी वक्त बना दी जाएगी। तू देखेगा तो कालीन बिछे होंगे, ऐसे लम्हात में कालीन बिछ चुके हैं, ये क्या हो गया? तीन सवाल का जवाब देने वाले के लिए तीन सवाल का जवाब कौन देगा? जो मन रब्बों का, रब का नाम याद किया होगा, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की निशानी ये है कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत करेंगे। शदीद एक मोहब्बत, एक शदीद मोहब्बत। अब ये जो जिक्र लाएगी जो है ना, ये शदीद मोहब्बतों में शुमार। सबको सबसे आंखें बंद कर लिया हमने, सारे जहान से मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली, और अल्लाह ही से जुड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लोग कहते किथे लिखा है, ओ खुदा के। ये कबर का पहला सवाल है। अगर तू रट के जाएगा तो याद आएगा ना, अगर तूने उस नाम को रटा ही नहीं है, उस नाम से तवज्जो ही नहीं कि तुझे याद कैसे आएगा। कबर का पहला सवाल मन रब्बू का किथे लिखा है। इन शैतानी चक्रों में ना आए, जाहिर लोगों ने दुनिया में फसाद फैला रखे। ये जो जिक्र लाई है, ये पहला कबर का सवाल आपको कह रहा है। शुक्र अदा करे उन बुजुर्गों का, हमारे अकाबरीन का, हमारे मशाइख का, कि देखो हम तक कैसी बात पहुंचाई है। हमारे बड़े मशाइख को कहाँ से मिली है? अल्लाह से मिली है। अल्लाह ने ये बंदे तैयार किए हैं अपने मशाइख, और इनको बताया कि कराओ इनको ये काम, फैला दो इसको अल्लाह को, फैला दो इसको जिक्र को। आँख बंद, नाक कान बंद, लब बंद हो, गोश बंद हो, चश्म बंद, गरना बीनी सर्रे हक बरमा मखंद, ये लब होठ कान कान बंद करके अल्लाह का नाम। ये अल्लाह का नाम तेरे जाती फायदे में है, तेरे जाती फायदे पहला सवाल ही होगा। तो ये अगर जिक्र करने वाले को तो याद आके रहेगा भाई। ये कोई बात है, करते करते मरना है और मरते मरते करना है। हमने तो ये जिंदगी भर तक का ये मामूल है। अब जब तू जिंदगी भर का अल्लाह हु करता हो फौत हुआ है, तो चंद मिनटों में कैसे भूल जाएगा तू उसी नाम को? कब्र में उतरते ही फरिश्ता कहेगा मन रब्बू का, तो तू तो तेरी जिंदगी का एक पहरन था अल्लाह। बस मन रब्बू का अल्लाह, कोई मुश्किल काम है? सारी उम्र करते करते गया, सारे हम यही करते, अब यही हम यही कर रहे हैं, यहाँ यही काम कर रहे हैं ना, कैसे भूल जाएगा? अभी कोई नहीं, कल मरना है, किसी परसों मरना है, किसी तरसों मरना है, चंद दिनों में नंबर लगाओ, हमने सबने जाना है यहाँ से। जो ही कब्र में जाते जाओगे मन रब्बू का पहला सवाल तो अल्लाह। अब बता तू अल्लाह का जिक्र ना करने वाले तू क्या कहेगा? तू तो जिक्र करता मुहालिफ है, तो तू जिक्र तू क्या ना जवाब देगा पहले सवाल का? मन रब्बू का याद रखना, ये बहुत बड़ा सवाल है, और उस एहसान ना भूलो जिसे तुम्हें पहला ये जिक्र का लतीफा पहला सिखाया ना, पहला कलम, उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। पूरे सीधे डगर पे लगा दिया, सीधे रास्ते पे चला दिया उसने मन रब्बू का, मेरा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये खुद भी करो और अपने अहले खाना को भी कराओ। हम बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, माँ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, भाई से बड़ी मोहब्बत करते हैं, घर में एक से एक मुंह मांगी चीज उसे उन्हें ला के देते हैं। अगर मोहब्बत ही करते हो तो फिर उसे कब्र का पहला सवाल भी सिखा दो खुदा के लिए। अपनी माँ बहन भाई को बेटे को जिसे मोहब्बत करते हो ना, उसे कहो बेटे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बीवी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं क्या तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती, लेकिन इन सूटेड पूरी चीज़ों के अलावा, दुनियावी चीज़ों के अलावा मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुझे मैं आग में जलता हुआ देखना नहीं चाहता। क्यों? कब्र में तो आग है, कब्र में अजाब है, तो वहाँ खुदा के लिए उस अजाब से बचने के लिए मेरे साथ बैठ जा, अपने घर में बैठा के चले पहले लतीफा करवा उसे करवा दो। अपने जिससे मोहब्बत करते हो उसे पहले लतीफा करवाओ, फिर तो तुम मोहब्बत के महबूब हो, वरना तुम धोखा कर रहे हो। तुम भी धोखेबाज हो, भी धोखेबाज। हमारी कोई मोहब्बत नहीं। बेटा कहता बाप से मैं प्यार, बाप कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई प्यार नहीं करता। अगर तू प्यारा ही समझता है तो उसको अजाब कब्र का पहला सवाल ही समझा दे। यहाँ तो कोई मुसीबत नहीं है, गरीब से गरीब घर में भी हम आराम आशाइश हैं, थोड़ी बहुत भूख नहीं है, लेकिन जो अजाब की जगह कब्र में आ रही है, नहाई की जगह, उसको खुदा के लिए वो सबक पहला सिखा दे। पहले सबक से ही, पहले सवाल से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर किसी को दूसरा सवाल में भी कमी आ गई तो पहला सवाल इतना बरकत वाला है, पहला जवाब, कि उसको कवर कर जाएगा। वतबारक का वताला जद्दू, तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है, तेरा नाम बड़ी बुजुर्गी वाला है। जब बरकत वाला नाम का पहला सवाल तूने कह दिया ना अल्लाह, तो अगले सवाल भी आसान हो जाएंगे। फिर तुझे अल्लाह की तरफ से वो रहमत हो जाएगी। मादीनों का इस्लाम, मन नबियों का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला सवाल ही रटा दे यार उस भाई को, अपने प्यारे को, अपने महबूब को, अपने भाई बंद को। झूठे दावे ना कर मैं तेरा जिगरी यार हूं। नहीं जिगरी यार है। अगर जिगरी यार है तो पहला सवाल समझा दे खुदा के लिए उसे, कि पहला सवाल होगा मेरे अजीज, तो तूने ये जवाब देना है। फिर सवाल निंदा उसके लिए मश्क करनी होगी मेरे साथ कर, सुबह शाम दिन रात मैं भी करूंगा। मरकज में जिक्र करके गया है, जाके घर में आ जाओ, सोने लगे 10 मिनट के लिए आ जाओ मेरे साथ, अपने अहले खाना को, अपने माँ बहन भी बच्चों को। और यकीन मानो हमने खवातीन को तो ऐसे आजाद छोड़ा हुआ ना जैसे उनका हिसाब ही नहीं होना। उन्होंने ही पकड़वाना है, उनका हक है। जब तू सारा काम लेता है घर के तमाम चीज, ये मेला क्यों है, ये बर्तन ठीक नहीं है, नमक ज्यादा कम क्यों हो गया, हम डांट डपट करते हैं, तो ये भी हमारे दायरे में है कि हम उसको तमाम मामलात के साथ साथ अल्लाह का नाम लेना भी सिखा दें, क्योंकि उसने मरना है। और उसको तूने अगर नहीं बताया तो एक अजीब शरीफ से ये थोड़ा मेरे मंदिर गुजरा है कि जब एक हाजी साहब, एक नमाजी साहब और एक गाजी साहब अल्लाह के यहां पेश होगा तो सारी खूबियां उसमें हैं, तो अल्लाह फरमा देगा कि जाओ एक जन्नत में ले जाओ इसे। उसी दौरानी में एक बीवी, उसकी बीवी कह गई इंसाफ अल्लाह इंसाफ, हाँ इंसाफ क्या बात है, अल्लाह ताला ये मेरा खावन था, ये खुद तो हज करता रहा, जहाज करता रहा, मरकज के इस्तेमाल में जाता रहा, अहलुल्लाह के कुर्बत में जाता रहा, खुद तो वलीअल्लाह बन गया ये, लेकिन मुझे अपने घर के कामों में रखा, मुझे कभी इसके अल्लाह का नाम नहीं सिखाया, वापिस ले आओ इसे। दावा सच्चा है, ये तेरी बीवी आज प्यारी, हमारी बीवियां माए बहने हैं ना, ये हमें प्यारी हैं, इनका हक है कि हमें पहला कब्र का पहला सवाल सिखा दे। अगर नहीं सिखाया तो मुजरिम है, तेरी जन्नत का आर्डर हुआ वापिस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दावादार है बीवी, बहन, माँ, बेटी, दावा करेगी कि मेरा बाप खुद अकेला खुद सराफा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुलमत कदे में नूर फैलाना, इसको फैलाया नहीं ना, देखना तेरी हज और तेरी नमाजें और तेरी हजूत और तेरा इस तमाम पे आना कैसे पकड़ में आता है। या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अपने आप को संवार के चला गया। खुदा के लिए अपने आप को नहीं संवारना है, संवार के नबी के सवरे संवराए थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बुनियादी तौर पर ही सवरे संवराए थे। तूने क्या जरूरत थी ये सौ को उठाने की, फतह जंग जदल करने की क्या जरूरत थी, ये इसलिए कि नूर फैलाना था। तो हम भी अगर नूर ना फैलाए ना तो हमारी जितनी इबादत है ना जन्नत के अंदर इजाजत हो गई है, वापिस बुलवा लेंगे हमारे दवा की, खासकर बीवी का हक बहुत ज्यादा, क्यों बीवी हमारे ताबे, हम उसके वो कहेगी कि मैं इसके ताबे थी, मैं चार दीवारी में थी, इसने मुझे नहीं सिखाया अल्लाह का, सारे काम में टोकता था। खुदा के लिए अपने घर को फैलाओ, और बीवी अगर सही हो गई आ गई तो औलाद को खुद भी औलाद को भी कर लेगी, लेकिन तूने उसको अपनाया ही नहीं। बराए मेहरबानी एक तो ये आप बात ध्यान रखें, दूसरा एक ये है कि हम कहते हैं अल्लाह एक है, वही हमारा मालिक है। कहां से कहते हैं? यहां से कहते हैं। अगर ये यकीन हो जाए ना हमें कि अल्लाह ताला ही हमारा मोमिन है और सब कुछ उसके हाथ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में बैठे, कुछ सहाबा ने आपको हिफाजत तौर पर कहा था दारे अरकम में बैठे, क्योंकि मुखालिफिन मक्का आपको खत्म करने के दर पे थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तैश में आकर तलवार निकाल के चल पड़े, मैं भी खत्म करता हूँ उन्हें, क्या तूफान मचा दिया है बैतुल्लाह के अंदर, ये मक्का के अंदर। और बड़े चरी और कवि और माने हुए शख्सियत थी, इस्लाम नहीं लाए थे, तो तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए और चल पड़े। बहन से निपटे हैं, थोड़ा सा घर में बहन के घर जाना पड़ गया, वहां से आए सीधे उसे तलवार लेकर के दारे अरकम में, एक साहबी का घर था अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु, साहबी थे उनका घर, वहां हजूर की हिफाजत के लिए वो बैठे थे, बैठे रहते थे। लोग मुखालिफ हो गए मक्के वाले, ईजान आ गए, उनको पता चला तो वहां आकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से साफ आए, फिर किसी औकात में अंदर आ गए।